पृष्ठ संख्या 236। दरअसल ग्रीष्म ऋतु निराला के कवि स्वभाव के निकट कभी नहीं रही। ग्रीष्म की प्रचंडता ने उन्हें विशेष रूप से कभी आकर्षित नहीं किया। अपनी आंतरिक और बाह्य विडंबनाओं की दृष्टि से उनका जीवन बिंब वर्षा के ही सबसे अधिक निकट ठहरता है। इसीलिए ग्रीष्म पर लिखी एकमात्र बिंब प्रधान कविता उक्ति का पर्यवसान भी वर्षा के पूर्व संकेत में ही होता है। यद्यपि उनका समग्र अंतरतम अनेक दुखांतों की लहरों से उद्वेलित होता रहा है, फिर भी उसमें मरुप्रदेश कम है, हरी भरी बेतरतीब घाटियां ही अधिक हैं। हरियाली और श्यामल मेघ उनके सबसे पहले आकर्षण हैं। इसी तरह अपनी दो एक कविताओं में उन्होंने पतझर का बिंब भी लिया है। जिस तरह ग्रीष्म कविताओं का पर्यवसान वर्षा में होता है, उसी तरह पतझर की कविताओं का पर्यवसान बसंत की पूर्व सूचना में होता है। वन वन के झरे पात नग्न हुई विजन गात, जैसे छाया के क्षण हंसा किसी को अपनवन। पृष्ठ संख्या 237। अब करपुट विज्ञापन क्षमापन प्रपन्न प्रात, करुणा के दान मान फूटे नौ पत्रगान, उपवन उपवन समान नवल स्वर्ग रश्मि जात। पतझर का वह स्वरूप किसी दुख और उदासी में अवसित नहीं होता। यह एक क्षमा विनम्रता से पूर्ण अनुभूति चित्र है। यह क्षरित होते जाने के अनुभव के बिना किसी अवसान के गुजर कर फिर से नई प्रार्थना, नए गान और नए विनम्र उल्लास तथा प्रकाश तक पहुँचने का क्रम है। निराला की अधिकांश ऋतु कविताओं की मुख्य भावभूमि यही है। पर्यवसान में भी उगते हुए एक पवित्र और निश्चल सुख की अनुभूति, लेकिन कुछ कविताओं की अभिव्यक्ति इसके विपरीत भी दिखाई देती है। करुणा वहाँ अति विवशता और दैन्य की भूमि तक पहुँच गई है, लेकिन कवित्व की प्रगाढ़ता और संवेदना का सघनतमपन उतना ही अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह दैन्य भी सहज और अतिशय मानवीय तथा पवित्रतम मन की अनुभूति से जन्म लेता है। कहीं कोई बनावट नहीं, आवरण नहीं, छिपाव दुराव नहीं, निश्चलता और पवित्रता तथा सहजता का चरम आकर्षण ही इन कविताओं को अमर और अविस्मरणीय बना देता है। आत्मकथन और आत्म साक्षात्कार का यह सहज रूप उन्हें भक्तों की निवेदनात्मक भूमिका की ओर अक्सर ले जाता है। नैराश्य और अवसाद की यह निश्चलता अंतर को चीर देने वाला प्रभाव छोड़ती है। जहाँ वसंत की हवा और कोयल की काकली भी बीतते जाने की कारुणिक व्यथा को दुगना कर देती है। दुखता रहता है अब जीवन पतझर का जैसा वन उपवन, झर झर कर जितनी पत्र नवल कर गए रिक्त तनु का तरुदल, है चिन्ह शेष केवल संबल जिनसे लहराया था कानन। डालियां बहुत सी सूख गईं उनकी न पत्रता हुई नई। पृष्ठ संख्या 238। आधे से ज्यादा घटा बिटप बीज को चला है ज्यों छड़ छड़, यह वायु वसंती आई है कोयल कुछ छड़ कुछ गाई है, स्वर में क्या भरी बुढ़ाई है दोनों ढलते जाते उन्मन। यह गीत उनके एक पूर्ववर्ती गीत की याद एक दूसरे स्तर पर दिलाता है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया। कवि की अपनी रचना समृद्धि, अपनी निर्भ्रांत मौलिक सृजना में अनंत आत्मविश्वास है। वह अपने आत्मदान की गरिमा और महत्ता को पहचानता है। यह निरा अहंकार प्रदर्शन नहीं है, बल्कि अपने आत्मदान की सजगता का प्रमाण है। वह अपने पल्लवित पल की अनश्वरता से पूरी तरह परिचित है, इसीलिए इस आत्मदान के पश्चात छिजते जाने और ढाते जाने, विनष्ट होते जाने के प्रति भी वह संतुष्ट है। वह अवसादग्रस्त नहीं है, बल्कि अपने अमर योगदान की गरिमा से मंडित, आलोकित और शांत है। जीवन रस रहित हो जाने, निरी रेते हो जाने, कोयल की कूक से रहित, निरर्थक शब्द पंक्ति की भांति फैली सूखी डाल और जले हुए जीवन का पर्यवसान भी क्षमा, संतोष और आत्मदान के सरल ज्ञान में यहाँ होता है। लेकिन उपर्युक्त गीत में आत्मदान की यह गरिमा, अनश्वरता का यह संतोष तिरोहित हो गया है। वहाँ सिर्फ दुखता हुआ जीवन है, डालियाँ अपत्र हो गई हैं और नए पत्तों के निकलने की आशा समाप्त हो गई है। शरीर वृक्ष अपने मूल की ओर धसता जा रहा है। वसंत की वायु से सहसा चकमकाई हुई कोयल का स्वर भी बूढ़ा लगता है। जीवन वसंत का अवसान निकट है, कोई शिकायत नहीं, यह केवल एक सहज मानवीय आत्म साक्षात्कार की भूमिका है। फिर यहाँ निराला ने जीवन बिंब और ऋतु बिंब को बड़ी ही सहज एकान्विति में संजो दिया है और संभवतः दूसरे तरह के शब्द विधान के सहारे वह ठूंठ की उसी प्रणत मनोभूमि पर इस कविता द्वारा भी पहुंचते दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 239। ठूंठ है यह आज गई इसकी कला, गया है सकल साज। अब यह वसंत से होता नहीं अधीर, पल्लवित झुकता नहीं अब यह धनुष सा, कुसुम के काम से चलते नहीं है तीर, चाह में बैठते नहीं पथिक आह भर, झरते नहीं यहाँ दो प्राणियों के नयन नीर, केवल वृद्ध बिहग एक बैठता कुछ कर याद। दोनों कविताओं की रचना में 15 वर्षों का अंतर है, लेकिन भावभूमि की यह एकान्विति प्रथम अध्याय में उपस्थित की हुई मेरी स्थापना का प्रमाण प्रस्तुत करती है। यही कि निराला में रचना प्रक्रिया के कई कई स्तर साथ साथ क्रियाशील रहते हैं। जिस भावभूमि पर सितंबर 1937 में उन्होंने ठूंठ लिखी, फिर 15 वर्षों बाद वह उस पर लौटते हैं। ऐसा नहीं है कि सन 37 से सन 52 तक लगातार वह दैन्य करुणा और अवसान की इसी मना स्थिति में रहे। स्नेह निर्झर रचना वर्ष के लिहाज से इन दोनों के बीच की कविता है, जिसमें वह आत्मदान की गरिमा और महत्ता से अपने छिजते हुए जीवन वृक्ष और सूखते हुए जीवन निर्जर से भी संतुष्ट नजर आते हैं। जीवन वृक्ष का यह बिंब बार बार उनकी कविता में आता है। वृक्ष की हहराती हरियाली को निराला ने अपने जीवन बिंब के रूप में चुना। यह चुनाव ही कवि के अनंत प्रकृति प्रेम का साक्षी है। जो ठूंठ वसंत से अधीर नहीं होता था, वही धीरे धीरे पृथ्वी में अब धंसता जा रहा है। अवसान का यह बिंब निराला की काव्य वर्चस्विता का अनुपम रूप प्रस्तुत करता है। यहाँ अतीत की स्मृतियों का वृद्ध बिहग बैठा हुआ है, तो यहाँ बूढ़ी कोयल है जो वसंत की हवा से अधकचा कर अपनी बूढ़ी आवाज में कुछ गाने लगती है। लेकिन रचना लहरियों का यह पुनरावर्तन पुनरावृत्ति का आभास कहीं नहीं दिलाता। इसकी वजह शायद कवि का अपनी अनुभूतियों को उतनी ही गहराई और गरिमा से बार बार जीना ही है। पृष्ठ संख्या 240। वसंत में पर्यवसान की एक और कविता गीतिका में है, जिसमें एक पौराणिक बिंब को बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। वहां पर भी उसी सूखी डाल का जिक्र है, लेकिन सूखी की जगह निराला ने यहाँ रूखी शब्द का प्रयोग किया है। वह आम का उस सूखी अर्थहीन पंक्ति की तरह आकाश की पृष्ठभूमि में फैली डाल से अलग है। वह उस तन तरु से भी अलग है जो अपने मूल की ओर धसता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ कवि को उसकी पत्रता के पुनः प्राप्त करने में अनंत विश्वास है। वह चाहे अपर्ण अशना क्यों न हो, उसके पल्लव वसना होने में कोई संदेह नहीं है। इसीलिए निराला उसके लिए सूखी शब्द का इस्तेमाल ना करके रूखी कहते हैं। तपी हुई कोमलता से कुछ कुछ रहित तपा छाम, फिर इस रूखी डाल में निराला तपस्यारत पार्वती और आशुतोष शंकर के पौराणिक बिंब की प्रतिष्ठा करते हैं। तपा क्षमा इस पार्वती रूपी डाल को जब वसंत पत्रों पुष्पों ब्रैकेट में वरदान से लाद देगा, तब संपूर्ण सुशोभित सौंदर्यशालिनी यह स्मरहर ब्रैकेट में शंकर वसंत के साथ परिणीता होगी। अपर्ण अशना समीर माला सुकृत कुलों तथा आशुतोष फल इस शब्द बंध किस तरह दोहरे अर्थों की व्यंजना में सफल है और इस तरह एक पूरी पौराणिक कथा को वसंत के बिंब में कितने संश्लिष्ट और संक्षिप्त रूप में संजोया गया है, यह दर्शनीय है। उत्कृष्टतम गीत तत्वों के साथ शब्द विधान और बिंब योजना की कला में निराला अपने समकालीनों में बेजोड़ हैं। उनकी इसी संश्लिष्टता को कुछ आलोचकों और पाठकों ने काठिन्य समझ लिया है। दरअसल यह संश्लिष्टता एक संगठित गीत क्षमता और शिल्प संक्षिप्ति का प्रतिफलन है। उसका रस और सौंदर्य उसके भीतर पैठने में है। रूखी री यह डाल वसन वासंती लेगी, देख खड़ी करती तप अपलक, हीरक सी समीर मलाल जप, शैल सुता अपर्ण अशना, पल्लवसना बनेगी वसन वासंती लेगी। हार गले पहना फूलों का, ऋतुपति सकल सुकृत कुलों का, स्नेह सरस भर देगा उरसर, स्मर हर को वरेगी वसन वासंती लेगी। पृष्ठ संख्या 241। वर्षा और वसंत ऋतु की कविताओं के विस्तृत अध्ययन पर आने के पहले शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं से संबंधित कविताओं पर भी यहाँ विचार कर लेना आवश्यक है। दरअसल निराला की अपनी ऋतु वर्षा ही है। फिर जिस दूसरी ऋतु के प्रति उनका आकर्षण दिखाई देता है वह है वसंत। ऊपर के विवेचन में हमने देखा कि ग्रीष्म ना तो उन्हें आकर्षित करता है ना आतंकित। जो चंद पंक्तियाँ इस संदर्भ की हैं उनको भी निराला वर्षा ऋतु में ही समाहित करके देखते हैं। इसी तरह पतझर संबंधी कविताओं का अंत वसंत के पल्लव वसन और आशुतोष फल में होता है। पतझर वैसे भी भारतीय ऋतुओं के हिसाब से कोई ऋतु नहीं है। वसंत का आरंभ वहाँ पेड़ों के अपत्र होने के साथ ही होता है। इस दृष्टि से निराला की पतझर की कविताओं का भाव विकास देखने योग्य है। रूखी डाल पल्लव वसन पहनकर अंततः आशुतोष फल की अधिकारिणी और प्रेरणादात्री बनती है। इसी प्रकार ग्रीष्म द्वारा तपाए जीवन आकाश में नील मेघों की मालाएं पड़ती हैं। सच यह है कि निराला ने इन दोनों ऋतुओं का वर्णन वर्षा और वसंत की पूरक ऋतुओं के रूप में किया है। भारत वर्ष में ऋतुओं के आगमन की दृष्टि से उनका इस प्रकार का चित्रण अत्यंत वैज्ञानिक लगता है। शरद ऋतु ग्रीष्म की तरह ही शरद का चित्रण भी निराला ने एक पूरक ऋतु के रूप में ही किया है। शरद ऋतु भी उन्हें विशेष आकर्षित करती नहीं दिखती। इस ऋतु से संबद्ध कुल 5-6 कविताएं उनके सारे संग्रहों में ढूंढने पर मिल जाती हैं। उनके प्रारंभिक संग्रहों में शरद ऋतु पर कोई कविता नहीं मिलती। इस शीर्षक की पहली कविता नए पत्ते में कैलाश में शरद है। दरअसल यह भी शरद ऋतु की कविता नहीं है। यह कविता निराला के अर्धविकसित कल्पना संकुल स्वप्नशायी मानस की उपज लगती है। इसमें निराला स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा और अन्य शिष्यों के साथ अपनी कैलाश यात्रा का वर्णन करते हैं। कविता नितांत इतिवृत्तात्मक है और कैलाश पहुँचने पर जहाँ शरद ऋतु का जिक्र आया है वहाँ सिर्फ निराला को ऋतु का विरोधाभास दिखाई देता है। शरद ऋतु आने पर कमल खिल जाते हैं लेकिन यहाँ कमल मूंद गए हैं। इसके अलावा शरद ऋतु का कोई संश्लिष्ट सघन प्रभाव उत्पादक चित्र पूरी कविता में नहीं आया है। शरद ऋतु की दूसरी कविता आराधना में है। जैसा कि मैंने कहा शरद का वर्णन भी वर्षा की एक पूरक ऋतु के रूप में ही निराला ने किया है। बादलों का कट छट जाना, ओस का गिरना, हर श्रृंगार जूही मालती और चमेली के सफेद फूलों का खिलना, ठंडी हवा की शुरुआत, नदियों का अपनी स्वाभाविक सीमा में लौट आना और कीचड़ दलदल का समाप्त हो जाना, यहाँ तक तो निराला शरद के इस वर्णन पृष्ठ संख्या 242 में कुछ कुछ पारंपरिक लगते हैं लेकिन अंतिम पंक्ति में वह अपने इस ऋतु चित्रण को फैली हलचलवाई कहकर एक सर्वथा नवीन धरातल पर उतार देते हैं। आराधना के बाद तीन कविताएं शरद ऋतु से संबंधित गीत गुंज में मिलती हैं। ये तीनों कविताएं उनके अगले और अंतिम संग्रह सांध्य काकली में भी समाविष्ट हैं। इनमें पहली कविता रूपक के रथ रूप तुम्हारा तो नारी शरीर के अंदर ऋतु को मूर्त करने का प्रयास है। इसके द्वारा स्त्री के अनुपम निश्चल और शांत सौंदर्य की सृजना निराला ने की है। खिली चमेली देह गंध मृदु अंधकार शुचि केश कुटिल ऋतु सहन शीत सित यौवन अबिचल मानव के मन की चिरकारा। दूसरी कविता भी वर्षा के छटने के बाद के शांत उज्ज्वल प्रकृति सौंदर्य और धान्य संपन्नता का एक सुंदर सा चित्र है। शीर्ण हो चली नदियों और झरनों के साथ ही साठी के खेतों के कटने का वर्णन है। तीसरी कविता शरद की शुभ्र गंध फैली भी विषय के लिहाज से इसी तरह की कविता है। सांध्य काकली में इस कविता को जो पाठांतर प्रकाशित है उसमें कुछ संशोधन परिवर्तन भी किया गया है। यह संशोधन परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे कवि की रचना प्रक्रिया शब्द योजना और अपनी भाषिक संरचना के प्रति उसकी गहरी चिंता झलकती है। गीत गुंज में एक कविता है और इसका परिवर्तित रूप सांध्य काकली में है। गीत गुंज में शरत की शुभ्र गंध फैली खुली ज्योत्सना की सित शैली काले बादल धीरे धीरे मिटे गगन को चीरे चीरे पीर गई उर आए पीरे बदली दुति मैली शीतावास खगों ने पकड़े चह चह से पेड़ों को जकड़े यौवन के वन उपवन अकड़े ज्वारों की लटकी है थैली। 29/11/56। और सांध्य काकली में शुभ्र गंध शारद की फैली ज्योत्सना की हंस दी सित शैली काले बादल धीरे धीरे मिटे गगन से हिम सरसी रे फैली समुद्र वेल जल धीरे बदली द्युति पहली जो मैली शीतावास खगों ने पकड़े चह चह से पेड़ों को जकड़े यौवन से वन उपवन अकड़े ज्वारों की लटकी है थैली। 29/11/56। पृष्ठ संख्या 243। कविता के दोनों भाषांतरों के नीचे रचना तिथि एक ही दी हुई है। जो भी संशोधन परिवर्तन कवि ने किया है वह पहली पंक्ति और पहले बंद में ही किया है। निश्चय ही पहली पंक्ति का परिवर्तित रूप जो सांध्य काकली में छपा है लयात्मकता और ध्वनि सौंदर्य की दृष्टि अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। गीत गुंज की पंक्ति शरद की शुभ्र गंध फैली में एक सपाट गद्यात्मकता है जो शब्द संयोजन के जरा से बदलाव और मात्र वृद्धि से गहरे गीत सौंदर्य में बदल गई है। लेकिन दूसरी पंक्ति के संशोधन परिवर्तन से सहमत होना मुश्किल है। गीत गुंज की पंक्ति खुली ज्योत्सना की स्थित शैली अधिक प्रवाहमान गतिशील और गीतात्मक ध्वनात्मकता से युक्त है जबकि सांध्य काकली की पंक्ति में गद्यात्मकता अधिक आ गई है। गीत गुंज की पहली पंक्ति 15 मात्राओं की है और दूसरी में 16 मात्राएं हैं। सांध्य काकली की पहली पंक्ति में 16 मात्राएं हैं और दूसरी में 17 मात्राएं। इस तरह गीतात्मकता और लय की दृष्टि से जहाँ गीत गुंज की पहली पंक्ति गेय सौंदर्य को खंडित करती है वहाँ सांध्य काकली में दूसरी पंक्ति इस कमजोरी का शिकार है। अब अगर सांध्य काकली की पहली पंक्ति और गीत गुंज की दूसरी पंक्ति को कविता में रखकर देखें तो ध्वनि लय और अर्थ का अत्यंत भाव में कलात्मक सौंदर्य निखर आता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस स्थिति में दोनों पंक्तियों में मात्राओं की भी समानता आ जाती है। सांध्य काकली में शुभ्र गंध शारद की फैली और गीत गुंज में खुली ज्योत्सना की सित शैली। ज्योत्सना की सित शैली के खुलने में जो सौंदर्य और अर्थ ध्वनित है वह उसके हंसने में नहीं, हंसने में सिर्फ एक आनंद भाव की व्यंजना है, खुलने में सर्वांतिक संपूर्ण विकास की। वैसे इस संबंध में मतभेद की गुंजाइश हो सकती है, मैंने सिर्फ अपना विचार ही व्यक्त किया है। अब अगले बंद को लें। मेरी समझ में सांध्य काकली में इस बंद का जो भाषांतर छपा है उसमें भाव और गीत सौंदर्य के साथ ही चित्रात्मकता और बिंब गरिमा भी कम हो गई है, बल्कि नष्ट हो गई है, कहें तो ज्यादा उचित होगा। आकाश को कई फाकों में विभाजित करते हुए चीरे चीरे काले बादलों का धीरे धीरे घुल जाना एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर दृश्य बिंब की सृष्टि करता है। फिर उसकी अगली पंक्ति, पीर गई उर आए पीरे, में ऋतु सौंदर्य के मानसिक प्रभाव का वर्णन है। चौमासा बीता और प्रिय लौट आए, मन की व्यथा दूर हुई, आंसुओं का अवतन झरना वर्षा बंद हुआ। मेरी वह चमकती हुई देह द्युति जो विरह दुख के घटा टोप में मैली पड़ गई थी, इस शरद की शुभ्र गंध के साथ ही प्रिय के लौटने के साथ ही लौट आई। यह कथन संपूर्ण ऋतु प्रवाह को मन के अंदर ढालता है, जबकि सांध्य काकली में यह पृष्ठ संख्या 244 बंद सिर्फ एक प्रकृति चित्रण का रूप ग्रहण कर लेता है। शब्दों की दोहरी तिहरी व्यंजनाएं मात्र अविधात्मक अर्थ तक सीमित हो जाती हैं। चीरे चीरे में जो चित्रात्मक सौंदर्य है वह हिमसरसीरे में आकर एक तथ्य कथन में बदल जाता है। इसके अलावा उसका अर्थ करने के लिए अन्वय तथा और संयोजक अव्यय का सहारा लेना पड़ता है। काले बादल ब्रैकेट में और हिमसरसी धीरे धीरे गगन से मिटे, साथ ही रे का संबोधन व्यर्थ पड़ जाता है और वह सिर्फ तुक के लिए लाया गया जान पड़ता है। आगे चलकर फैली समुद्र वेल जल चीरे प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं लगता। जल को चीरती हुई या जल को चीर कर, यदि जल को चीरती हुई अर्थ लें तो चीरती हुई में जो एक गति और वर्तमानता का भाव है वह चीरे से नहीं व्यक्त होता, धीरे धीरे से अभिव्यक्त होता है। और यदि इसका अर्थ चीर कर पूर्वकालिक क्रिया में ले तो यह गलत प्रयोग ठहरता है। इसी तरह इस बंद की अंतिम पंक्ति में सांध्य काकली के भाषांतर में पहली जो यह वाक्यखंड बढ़ाया गया है वह सिर्फ समझाने का प्रयत्न लगता है, उससे पंक्ति फैलती है और गद्यात्मक हो जाती है। जबकि शरद के पहले वर्षा का आभास बादलों के मिटने में दिया जा चुका है, इससे स्पष्ट है कि वर्षा काल दुख के समय में चमकता हुआ उज्जवल देह का सौंदर्य धुंधला गया होगा। अतः पहली जो कहर उसकी ओर संकेत करना अनावश्यक लगता है। अतः पहली जो कहकर उसकी ओर संकेत करना अनावश्यक लगता है। इस तरह के संशोधन, परिवर्तन और भाषांतर निराला ने अपनी कुछ और कविताओं में भी किए हैं। अपनी लंबी कविता कुकुरमुत्ता के दूसरे संस्करण में इसी तरह के सैकड़ों परिवर्तन उन्होंने किए हैं जिनसे सहमत होना कठिन है। पिछले अध्याय में यथास्थान हम इसका विवेचन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और कविताएं भी हैं जिसके भाषांतर उपलब्ध हैं। शोध विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा खासा शोध विषय हो सकता है। इससे निराला की अपनी भाषिक संरचना के प्रति गहरी प्रतिबद्धता झलकती है। वह अपने काव्य स्थापत्य के प्रति अत्यंत सजग हैं और यह सजगता निरंतर उनके अंतिम काव्य संग्रह तक बनी हुई है। हेमंत ऋतु। हेमंत पर भी निराला ने कोई स्वतंत्र कविता नहीं लिखी। शायद ग्रीष्म की तरह हेमंत ऋतु भी निराला को आकर्षित नहीं करती। नए पत्ते की देवी सरस्वती शीर्षक कविता में जो षट ऋतु वर्णन का रूपक कवि ने बांधा है, एक हेमंत चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। यह चित्र भी धान्य संपन्नता का है। उगी हुई फसलों, सरसों और तीसी के पीले नीले फूलों से भरी प्रकृति श्री जैसे देवी सरस्वती का ही एक झलक मारता रूप है। पृष्ठ संख्या 245। सरसों के पीले फूलों की साड़ी पहने, अलसी के नीले फूलों की रेखा जिसमें स्निग्ध पवन में शस्य शीर्ष से उठी हुई तुम। शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु की कुल चार कविताएं निराला ने लिखी हैं। इन चारों कविताओं की भावभूमि अलग अलग है। पहली कविता गीतिका में संग्रहित है। इस गीत में विरह दुख और करुणा का चित्र निराला ने उपस्थित किया है। वर्णन बहुत कुछ परंपरागत है, लेकिन कविता का गीत सौंदर्य अनिवर्चनीय है। पहले बंद में नीलकमल कविताओं के थर थर कांपने का चित्र है। दूसरे बंद में वन देवी के हृदय हार से हर श्रृंगार की कल्पनाओं के झरने का चित्र है। और तीसरे बंद में विरह परी सी खड़ी स्त्री का चित्र है। ये तीनों चित्र प्रकांतर से स्त्रियों के ही हैं। संश्लिष्ट भाषा बंध का अद्भुत सौंदर्य इस कविता में निराला ने खड़ा किया है। दूसरी शिशिर ऋतु संबंधी कविता नए पत्ते में है। यद्यपि इसका शीर्षक ऋतु से संबंधित नहीं है, यह शिशिर का एक सर्वथा एक नए ढंग से चित्रण है। यहाँ निराला ने शिशिर ऋतु को भारतीय किसान की दहला देने वाली निर्धनता, विवशता, शोषण और असहायता के बीच रखकर देखा है। आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं, एक हफ्ते पहले पाला पड़ा था, अरहर कुल की कुल मर चुकी है, हवा हाड़ तक बेध जाती है, गेहूं के पेड़ ऐठे खड़े हैं, खेतिहरों में जान नहीं, मन मारे दरवाजे कौड़े ताप रहे हैं, एक दूसरे से गिरे गले बातें करते हुए कोहरा छाया हुआ। यह चित्र सारे देश के किसान का है। इस चित्र के समानांतर यदि हम कालिदास के शिशिर वर्णन का एक चित्र रख दें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि निराला ने कविता को या शिशिर वर्णन को अभिजात के संस्कारों से मुक्त करके कितने व्यापक सामाजिक स्तर पर रख दिया है। पृष्ठ संख्या 246। निरुद्धवातयान मंदिरोदरम हुताशनो भानुमतो गभस्तया गुरुणी वंशासीयवला सयोवना प्रयान्ति काले अत्र जनस्य सेव्यताम। निराला की कविता में लोग दरवाजे के बाहर कौड़ा ताप रहे हैं, खिड़कियां बंद करके मोटे ऊनी वस्त्र पहने जवान स्त्रियों को लिपटाए हुए शिशिर ऋतु नहीं बिता रहे हैं, बल्कि हवा उनके हाड़ तक बेध रही है। अंदर बाहर कोहरा छाया हुआ है और गिरे गले से बातें कर रहे हैं, ऐसी आवाज से जिससे लगता है लोगों में जान नहीं है। कारण अरहर पाले से मर चुकी है और गेहूं के पेड़ ऐठ गए हैं, सिपाही का लठ है और चंदे की वसूली है। ऐसी विवश स्थिति की प्रक्रिया सिर्फ कुत्ते पर होती है जो अचानक भौंकने लगता है। इस कविता में सिर्फ कथ्य के स्तर पर ही नहीं, संपूर्ण भाषिक संरचना और प्रखर संवेदनीयता के स्तर पर भी निराला ने काव्य के संपूर्ण परंपरागत आभिजात्य को ध्वस्त कर दिया है। यह एक सुंदर और तथाकथित रसीली कविता भले ना हो, नए काव्य धरातल की पूर्व सूचना तो है ही। चाहे निराला अपनी रचना प्रक्रिया के इस क्रियाशील स्तर को भले ही आगे चलकर त्याग चुके हों, कहीं न कहीं कविता के परंपरागत रूप के विषय में उनकी शंका का संकेत तो इन कविताओं के माध्यम से अवश्य मिलता है। और यह विश्वास कि कविता अंततः जनमानस के अंदर से ही अपना स्वस्थ स्वाभाविक रूप बनाए रख सकती है, और इसी में उसका भविष्य निहित है। शिशिर ऋतु की अगली दो कविताएं निराला के अंतिम संग्रह सांध्य काकली में मिलती हैं। दोनों कविताओं की पहली पंक्ति समान है। इनमें से एक कविता निराला की हस्तलिपि में संग्रह के प्रारंभ में छपी है और फिर अंदर भी दी गई है। पहली कविता में दोनों कविताओं में शब्द क्रम में जरा सा परिवर्तन किया गया है, लेकिन दोनों कविताओं की भावभूमि में जमीन आसमान का अंतर है। पहली कविता जहाँ नए पत्ते की कविता की तरह ही एकाकी किसान का चित्र प्रस्तुत करती है, वहाँ दूसरी कविता में उल्लास, सुख और आनंद का वर्णन है। प्रेम और सहवास का चित्रण ही दूसरी कविता का उद्देश्य है, लेकिन इसमें भी एक व्यंग्य निहित है। दोनों कविताओं को एक ही पंक्ति से शुरू करके संभवतः निराला व्यंग्य के सहारे शहरी और ग्राम जीवन के इसी विरोधाभास को उभारना चाहते हैं। पहली कविता में फिर वही किसान का कूकर आया है, अरहर पाले से कांप रही है और किसान एकाकी खड़ा सूख गया है। चित्र लगभग वही है जो नए पत्ते की कविता का है, लेकिन यहाँ चित्र में एक सघनता है। पृष्ठ संख्या 247 और नए पत्ते की कविता की अपेक्षा यह कविता मन पर किसान के दुख दैन्य का अधिक गहरा प्रभाव अंकित करती है। यहाँ किसान कौड़ा नहीं ताप रहा है, बल्कि एकाकी खड़ा सूख गया है, और कुत्ता भी उसके शोषणकर्ता पर मुंह उठाकर भूखता नहीं, बल्कि मचान के नीचे धीरे धीरे कुकहां रहा है। शब्दों के भीतरी संगीत और उनकी अर्थध्वनि संपन्नता की यह चकित कर देने वाली पहचान निराला में जगह जगह मिलती है। कुकहाया शब्द का प्रयोग ठंड से कांपते हड़रहे खौरहे कुत्ते के संदर्भ में अप्रतिम अर्थ और ध्वनि के एकत्र संयोग को व्यक्त करता है, लेकिन दूसरी कविता में सारी विषय वस्तु इसके ठीक उलट है। जैसे निराला पहली पंक्ति समान रखकर पाठक का ध्यान देहात के इस दुखदायन से बेखबर शहरी जीवन की ओर ले जाते हैं कि जरा इधर भी मुलाहिजा फरमाए। कांपे तन तरुणी तरुणों के प्रात खुले, अधर अरुणों के पुष्ट प्राण पलते ढक ढक कर कृष्ण नगर नगरी। शीत की साय शोभन क्रीडोपरांत, सभ्य सकल बंगलों के उपांत, ताप रहे विद्युत कंडी क्षण बैठी परी परी। शीत की मुझे लगता है इन दोनों कविताओं के माध्यम से दो विरोधी चित्र उपस्थित करना और उनके द्वारा एक व्यंग्य की सृष्टि करना ही निराला का उद्देश्य है। सहवास की इच्छा से कांपते हुए युवक युवतियों के तन और एक दूसरे के होठों को होठों में दबाए हुए उनके होंठ सारी रात के बिलास के बाद सुबह को ही खुलते हैं। उसके बाद भरी भरी संतुष्ट गदराई हुई जवान स्त्रियों को सुबह सुबह देखकर कवि कहता है, पुष्ट प्राण पलते ढक ढक कर। एक गदराई हुई स्त्रियां अत्यंत सुरक्षा में ढक ढक कर पली हुई हैं। लिहाफ के अंदर के सहवास से उनका यौवन और पुष्ट होता चलता है, जिसे गली की भाषा में निश्चिंत खा खा कर मुटाना कहते हैं। अगली पंक्ति में निराला जैसे अपना निर्णय देते हैं। कृष्ण नगर नगरी शीत की यह एक काला नगर है। यहाँ सारा गदराया यौवन किन्हीं काले कारनामों की आड़ में सुरक्षित है। फिर सुबह के बाद शाम का चित्र है। बंगलों के अंदर टेनिस और बैडमिंटन खेलने का जिक्र है। सभ्य और सजे हुए बंगले हैं और परियों की तरह। पृष्ठ संख्या 248, बैठी स्त्रियां विद्युत कंडी ताप रही हैं। विद्युत कंडी शब्द का प्रयोग ही जैसे व्यंग्य के लिए किया गया है। दरअसल निराला ने यहाँ कालिदास के चित्र को ही उलट दिया है। कालिदास का चित्र, जैसा कि मैंने इस लेख के शुरू में ही कहा है, सिर्फ एक घटना के घटित होने तक ले जाता है। निराला ने उसे व्यंग्य के माध्यम से उलटकर उस चित्र से अलग उसके दूरवर्ती संकेतों को व्यंजित किया है। पहली कविता में किसान का माचा है तो यहाँ सजे हुए बंगले हैं। वहाँ कुकहाता कुकर और सूखता किसान है तो यहाँ सुरक्षा में पलते हष्टपुष्ट पुरुष और गदराई हुई परियों जैसी स्त्रियां हैं। वहाँ धुमाता कौड़ा है तो यहाँ विद्युत कंडी है। इस तरह निराला ने यद्यपि शिशिर ऋतु पर कुल चार ही कविताएं लिखी हैं, उनका अर्थ प्रसार, उनकी परिधि, उनका ध्वनि सौंदर्य और उनकी गीत्यात्मकता तथा भाषिक संरचना की विविधता और संदेश की सोद्देश्यता उनके इस ऋतुवर्णन को उनकी ऋतु कविताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में समर्थ है।